पृष्ठ संख्या 153, चतुर्थ सत्र, रीति काव्य, केशवदास बिहारी घनानंद, महाकवि देव सेनापति मिर्जा गालिब। पृष्ठ संख्या 154 सादा। पृष्ठ संख्या 155 भूमिका का, रीति काव्य की पृष्ठभूमि। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल अपने राज्याश्रय साहित्य घोर श्रृंगारिक प्रवृत्ति कवि शिक्षा परक लक्षण ग्रंथों के निर्माण कलात्मक निपुणता तथा काव्य वैभव के चरम उत्कर्ष के लिए जाना जाता है। इस युग के साहित्य के निर्माण के पीछे युगीन राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा कला एवं साहित्यिक परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है, क्योंकि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का ही प्रतिबिंब होता है और जैसे जैसे उसकी मनोवृत्तियों में परिवर्तन होता है साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। रीतिकाल का साहित्य इन्हीं मनोवृत्तियों की उपज था। रीतिकाल के विवेचन के प्रकरण में शुक्ल जी ने इसे एक विचित्र संयोग की संज्ञा देते हुए लिखा है कि केशवदास के प्रसंग में पहले ही कहा जा चुका है कि वह काव्य में अलंकारों को प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। उनकी इस मनोवृत्ति के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विचित्र संयोग घटित हुआ, संस्कृत साहित्य के विकास क्रम की एक संक्षिप्त उद्धरणी हो गई। भक्ति की चरम प्रवृत्ति के बीच अचानक आए श्रृंगार और चमत्कार निरूपण की घोर प्रवृत्ति शुक्ल जी को एक विचित्र बात लगी, जिसमें बहुत कुछ संस्कृत साहित्य के आचार्यों एवं उनके काव्यालोचन के ग्रंथों की परिपाटी का अनुकरण किया गया था। इस तरह के साहित्य निर्माण के पीछे जिन परिस्थितियों का हाथ था उन पर दृष्टिपात करने से ऊपर विचित्र संयोग वाली बात फिर विचित्र नहीं लगती। राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगल शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके पतन का काल रहा है। शाहजहां के शासनकाल में जो मुगल सल्तनत अपने वैभव को स्पर्श कर चुकी थी उसकी पताका उत्तर भारत से लेकर दक्षिण में अहमदनगर बीजापुर तथा गोलकुंडा तक फहरा चुकी थी। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम में भी वह सिंध से लेकर आसाम में सिलहट और अफगान प्रदेशों तक विस्तृत हो गई थी। राजपूतों ने भी स्वामी भक्त सेवक बनकर दिल्ली के शासक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल और मयूर सिंहासन निर्मित हो चुका था। इस प्रकार जहांगीर से प्राप्त सल्तनत को शाहजहां ने एक मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाया। देश का राजकोष भरा पूरा था, किंतु शाहजहां की बीमारी और मृत्यु की अफवाह को लेकर उसके पुत्रों के बीच सत्ता संघर्ष हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह, जो पृष्ठ संख्या 156, अपने उदार और सहिष्णु व्यक्तित्व के कारण जनता में लोकप्रिय था, पराजित हुआ। शेष दो भाइयों मुराद और शाह शुजा का भी वध कर औरंगजेब ने सत्ता हथिया ली। उसके बागडोर संभालते ही धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता के कारण हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयत्नों को गहरा आघात लगा। जागीरदारों राजाओं और हिंदुओं के धार्मिक उपद्रव आरंभ हो गए। अपने अहंकार उन्माद और धार्मिक कट्टरता का परिचय देते हुए औरंगजेब ने वेश्यावृत्ति मद्यपान संगीत आदि पर रोक लगा दी। मंदिरों को नष्ट कर मस्जिद बनवाने लगा। हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। फलतः इस कर का भुगतान ना कर सकने की विवशता के कारण बहुत से हिंदू मुसलमान हो गए। औरंगजेब की कट्टर नीतियों के कारण जहांगीर और शाहजहां का बनाया हुआ विशाल और वैभवशाली मुगल साम्राज्य लड़खड़ाने लगा। उसकी कट्टरता और धार्मिक असहिष्णुता के विरोध में जाटों, सतनामियों, सिखों, राजपूतों, बुंदेलों और मराठों ने भी विद्रोह कर दिया। शिवाजी, दुर्गादास, बुंदेला चंपत राय, सिख गुरु गोविंद सिंह आदि के शौर्य और पराक्रम का उदय औरंगजेब से संघर्ष का परिणाम था। धीरे धीरे उनकी शक्ति क्षीण होती गई। दक्षिणी राज्यों के संरक्षण करने में ही उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी। 20 फरवरी 1707 ईस्वी को दक्षिण में ही उसकी मृत्यु हो गई। तदुपरांत गद्दी के लिए औरंगजेब के पुत्रों मुअज्जम आजम और कामबक्ष में संघर्ष हुआ जिसमें मुअज्जम विजयी रहा। 1707 ईस्वी में उसने बहादुर शाह के नाम से गद्दी संभाली, किंतु वह अधिक जीवित न रहा। उसके बाद के सुल्तानों जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मुहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय तथा बहादुर शाह द्वितीय आदि का राज्य भी अत्यल्प रहा। 1738 ईस्वी में नादिर शाह तथा 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। इन आक्रमणों के धक्के से मुगल साम्राज्य ढह गया। इसी बीच व्यापारी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजों का आगमन हुआ। धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर उनका कब्जा हो गया। 1857 ईस्वी की देशव्यापी राजक्रांति ने मुगल साम्राज्य का कारुणिक अंत कर इस देश पर अंग्रेजी हुकूमत का झंडा गाड़ दिया। सामाजिक दृष्टि से रीतिकालीन समाज मुख्यतः तीन भागों में बटा था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा तथा उसका परिवार, सामंत और मनसबदार आते थे। अमीरी और धन संपन्नता के कारण इनका जीवन भोग विलास में मत था। बादशाहों के साथ अमीरों को भी अपने हरम में एकाधिक स्त्रियों को रखने का शौक था। सम्राट के हरम में हजारों स्त्रियां होती थीं। अकबर महान के हरम में 5,000 स्त्रियां थीं। इस प्रकार उच्च वर्ग के पृष्ठ संख्या 157 लोग अपने ठाठ और ऐशो आराम के पंकिल में डूबे थे। मध्यम वर्ग एक प्रकार का मितव्ययी वर्ग था जो एक कड़ी का काम करता था। इसके अंतर्गत राज्य कर्मचारी, सेठ साहूकार, दुकानदार और व्यापारी आते थे। तीसरा और अंतिम वर्ग श्रमजीवियों का था जिसमें किसान, मजदूर, कारीगर, श्रमिक आदि आते थे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में इनकी दशा शोचनीय थी। ये गुलामों जैसा जीवन व्यतीत करते थे। सबसे खराब दशा स्त्रियों की थी। इन्हें भोग विलास की वस्तु मात्र समझा जाता था और बादशाहों से लेकर अमीर उम्रा तक के हरम में इनकी संख्या को बढ़ाने की होड़ लगी रहती थी। अनेक पत्नियों, रखेल स्त्रियों और वेश्याओं के आमोद प्रमोद से इनके जीवन का ठाठ विलास इंद्र के दरबार को भी मात देता था। शतरंज खेलना, शिकार करना, पशु युद्ध, चौगान, कुश्ती, बाजीगरी, कबूतर उड़ाना, पतंग उड़ाना, मदिरा पान करना आदि इनके मनोरंजन में शामिल था। तीतर बटेर पालना और उन्हें लड़ाना शाहजादों और राजकुमारों की दिनचर्या का अनिवार्य अंग था। विलासिनी माताओं की देखा देखी उनकी राजकुमारियां भी उन्मुक्त प्रेम प्रलाप करती थीं। इस काल की बहुसंख्यक जनता कृषि कार्य में संलग्न थी और उन्हीं के श्रम पर मध्यम और उच्च वर्ग मौज करता था। सामाजिक अवस्था की भांति इस काल का सांस्कृतिक परिवेश भी पत्नोन्मुख था। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के प्रयासों से हिंदू और मुसलमान संस्कृतियां एक दूसरे के सन्निकट आईं, किंतु औरंगजेब की कट्टरता ने उन्हें पुनः संकीर्ण कर दिया। विलास वैभव के खुले प्रदर्शन के कारण धार्मिक नियमों का बने रहना कठिन हो गया। महलों और गृहों से निकलकर मंदिरों तक विलास की यह लीला चल निकली। विलास साधनों से रहित वर्ग भाग्य और नियति के नियमों का अंधविश्वासी हो गया, जिसका लाभ दूसरे लोग उठाते थे। इसका प्रभाव इस्लाम के भी आचार विचार पर पड़ा। नैतिकता जाती रही, भोग विलास की आंधी ने उन्हें भी अपने भीतर खींच लिया। भक्ति का प्रभाव एकदम कुंद हो गया। इस काल में साहित्य, संगीत, स्थापत्य आदि कलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। चित्रकला, संगीत, साहित्य व स्थापत्य के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। हिंदू और मुसलमान संस्कृतियों के नैकट्य में आने के कारण इन कलाओं पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इस काल की एक बड़ी विशेषता थी दरबार या राजाश्रय का संरक्षण, जिसके कारण संगीत, साहित्य, चित्रकला व स्थापत्य को फलने फूलने का पूरा अवसर मिला। जहांगीर निर्मित मोती मस्जिद तथा इत्माजुद्दौला का मकबरा भवन निर्माण कला का अद्वितीय नमूना है। इसके अंग अंग से मुगल कालीन सौंदर्य की भावना टपकती है। नवाबों और पृष्ठ संख्या 158। सम्राटों ने अपने प्रियजनों की याद में इसी प्रकार के अनेक भवनों का निर्माण कराया था। आगरा में शाहजहां द्वारा बेगम मुमताज महल की याद में निर्मित ताजमहल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसकी गणना आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों में की जाती है। इसके निर्माण में 22 वर्ष और लगभग 3 करोड़ रुपए लगे थे। सम्राट शाहजहां द्वारा ही निर्मित दिल्ली का लाल किला और उसके ही भीतर बनी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद मुगल स्थापत्य की शान है। उत्तरकालीन शासक औरंगजेब ने भी दिल्ली में मोती मस्जिद और लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई, पर इनमें स्थापत्य की वह ऊंचाई नहीं आ सकी। चित्रकला और संगीत का विकास भी इस काल में प्रचुर रूप में हुआ। मुगल शासकों में जहांगीर के समय में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। उसके उसके दरबार में अनेक देशों के प्रख्यात चित्रकारों को संरक्षण प्राप्त था। अब्दुल हसन मुहम्मद नासिर जैसे चित्रकारों ने अनेक विषयों पर चित्रकारी कर इस विधा को समृद्ध किया। रामायण, महाभारत, पशु पक्षी, ऋतुओं, राधा कृष्ण, वन कुंज तथा दरबारों के चित्र, स्त्री सौंदर्य के चित्र, लोक गाथाओं कथाओं के चित्र आदि मुख्य हैं। इन चित्रों पर कांगड़ा और राजस्थानी शैली का विशेष प्रभाव है। ललित कलाओं में संगीत को भी राजाश्रय प्राप्त था। जहांगीर एक महान संगीत प्रेमी सम्राट था। उसके दरबार में 50 से अधिक गायक थे। इतिहासकार फास्टर के अनुसार अनेक गणिकाएं, नर्तकियां, नृत्य और संगीत द्वारा दरबार की शान को बढ़ाती थीं। शाहजहां भी संगीत का प्रेमी था। उसके दरबार में भी जगन्नाथ, रामदास महापात्र, लाल खां, सुखसेन तथा मिर्जा जुल बकरेन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों का जमावड़ा था। औरंगजेब की कट्टरता ने उसके समय में संगीत को भी क्षति पहुंचाई। इसके बावजूद संगीत शास्त्र के अधिकांश ग्रंथों का प्रणयन उसी के समय हुआ। साहित्यिक दृष्टि से यह काल अतिशय महत्वपूर्ण है। कला और संगीत की भांति साहित्य को भी राजाश्रय ब्रैकेट में दरबारी संरक्षण प्राप्त था। कवियों और कलाकारों का दरबार में बड़ा सम्मान होता था। जो कवि अपने आश्रयदाता की रुचि के अनुरूप कविता करता था, वह सहज ही उनके सम्मान और कृपा का पात्र बन जाता था। दरबारों में प्रतिभा आजमाइश को लेकर जबरदस्त कभी दंगल होते थे। फारसी इस समय की राजभाषा थी। इसके अतिरिक्त संस्कृत, हिंदी और उर्दू जैसी भाषाओं में भी रचना होती थी। हिंदी वालों की टक्कर विशेषकर फारसी वालों से होती थी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कहना है कि मुसलमानी दरबारों में राजकवि के पद पर फारसी के कवि भी रहते थे और हिंदी के भी। बड़े दरबारों में संस्कृत के भी कवि हुआ करते थे। फारसी काव्य की जो मुक्तक पृष्ठ संख्या 159, श्रृंगारी रचनाएं दरबारी कवि दंगलों में पढ़ी जाती थी, उनके जोड़ तोड़ में संस्कृत और हिंदी के कवि अपनी श्रृंगारी रचनाएं ही प्रस्तुत कर सकते थे। परिणाम यह होता था कि हिंदी कवियों के कवित्व सवैयों के आगे सर्वथा उर्दू फारसी के शेर नहीं ठहर पाते थे, और इस प्रकार हिंदी के कवि मैदान मार लिया करते थे। कवित्व सवैयों के नाद सौंदर्य के कारण इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रसंग दिल को छू जाते थे। इन्हीं सब परिस्थितियों में रीतिकालीन कविता का विकास हुआ। बिहारी जैसे कवियों ने अली कली ही सो बंध्यो के माध्यम से राजनीतिक चेतना को भी झकझोरने का काम किया। इस प्रकार रीतिमुक्त काव्यधारा के साथ ही रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों की अधिकांश कविता दरबारी आश्रय में बनी। इसीलिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस युग की कविता को दरबारी रचना कहना 16 आने सत्य माना है। उर्दू के जिन कवियों ने गजल को एक नई ऊंचाई दी, उनमें दर्द, सौदा और मीर का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। इस परंपरा को आगे चलकर जौक, मोमिन, जफर और गालिब जैसे फनकारों ने एक नया रूप दिया। इसी प्रकार संस्कृत के कवि आचार्यों में पंडित राज जगन्नाथ का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिन्हें बादशाह शाहजहां का संरक्षण प्राप्त था। चित्र मीमांसा खंडन तथा रस गंगाधर जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस प्रकार रीतिकालीन काव्य दरबारों में किसी न किसी रूप में हिंदी, उर्दू, संस्कृत और फारसी भाषा एवं साहित्य का विपुल विकास हुआ। खा, रीति शब्द का अर्थ एवं नामकरण का औचित्य। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल, जिसमें प्रमुख रूप से श्रृंगार प्रधान काव्य निरूपक लक्षण ग्रंथों की रचना हुई और संवत 1700 से 1900 ब्रैकेट में सन 1643 से 1843 ईस्वी के लगभग 200 वर्षों तक काव्य रचना के साथ लक्षण ग्रंथों के निरूपण की यह अविरल परंपरा अबाध गति से चलती रही, रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इस रीति शब्द का प्रयोग संस्कृत काव्यालोचन में आचार्य भरत और आगे चलकर रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ, किंतु उसका अर्थ हिंदी के रीति से भिन्न था। वामन ने रीति को परिभाषित करते हुए कहा था, रीतिरात्मा काव्यस्य, विशिष्ट पद रचना रीति ही, विशेष गुणात्मा, अर्थात रीति काव्य की आत्मा है जो विशिष्ट प्रकार की पद रचना से युक्त होती है तथा जिसमें ओज, माधुर्य, प्रसाद आदि गुण विद्यमान होते हैं। यदि रीति काव्य की आत्मा है तो गुण रीति की आत्मा है और इसीलिए वह विशेष गुणात्मा है। वैदर्भी, गौंडी और पंचाली ये प्रमुख रीतियाँ या शैलियाँ हैं। स्पष्ट है कि वामन ने रीति शब्द का प्रयोग मार्ग, शैली, पृष्ठ संख्या 160, पद्धति या पद संघटना के विशेष अर्थ में किया था। संस्कृत में अलंकार शास्त्र के अंतर्गत रस, अलंकार, छंद या पिंगल आदि समस्त काव्यांगों का बोध होता था, जो वस्तुतः काव्य के भूषण या सजावट के कारक थे। हिंदी की रीति कविता के लिए रीति शब्द का अर्थ रीतिकाल के आचार्य कवियों ने वामन से अधिक व्यापक अर्थ में ग्रहण किया। उनका अर्थ सर्वथा अलंकार शास्त्र के अधिक निकट है, जिसमें कविता के सभी काव्यांगों, रस, छंद, अलंकार आदि का समावेश होता है। केशव ने भूषण बिनु न बिराजे कविता बनिता मित्त को इसी भूषण या अलंकार के अर्थ में लिया था। इस प्रकार जैसा कि डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माना है कि रीति वस्तुतः काव्य रीति का ही संक्षिप्त रूप या नाम है, डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसे हिंदी के लिए काव्य रचना पद्धति के अर्थ में ही ग्रहण किया है, जो वस्तुतः पंथ या मार्ग का पर्याय है। स्वयं रीतिकाल के आचार्य कवियों ने भी अनेक स्थलों पर इस रीति को कवित्त रीति, सुकवि रीति या पंथ के अर्थ में ही ग्रहण किया है। जैसे एक रीति सुभाषा कवित्त की बरनत बुद्ध अनुसार चिंतामणि कवि कुल कल्पतरु। दो, काव्य की रीति सिख्यों सुकवीन्ह सो भिखारीदास काव्य निर्णय। तीन, सुकविनहु की कछु कृपा समुझी कबिन को पंथ भूषण शिवराज भूषण। चार, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति देव शब्द रसायन भामा वामन दंडी रुद्रट जयदेव मम्मट आदि के काव्य ग्रंथों ब्रैकेट में काव्यांग निरूपण ग्रंथों से हिंदी के रीतिकालीन कवियों की भिन्नता इस बात में है कि संस्कृत के आचार्य जब किसी काव्यांग का निरूपण करते थे तो वह उदाहरण स्वरूप संस्कृत के कवियों कालिदास, माघ, भवभूति, श्रीहर्ष आदि की कविताओं को रखते थे, पर हिंदी कवि जब काव्यांग निरूपण करते थे तो उद्धरण स्वरूप किसी कवि की रचना न रखकर स्वयं की ही बनाई हुई रचना को रखते थे। बस यही इनकी नवीनता है। बाकी के निरूपण के लिए ये सभी संस्कृत आचार्यों के ही ऋणी हैं। रीतियुगीन कविता के निर्माण में संस्कृत प्राकृत के जिन ग्रंथों का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है, उनमें अलंकार की दृष्टि से अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद, जयदेव का चंद्रालोक और दंडी का काव्यादर्श, रस निरूपण की दृष्टि से पृष्ठ संख्या 161, आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण और पंडित राज जगन्नाथ के रस गंगाधर का विशेष प्रभाव रहा। सर्वांग निरूपण के ग्रंथों में मम्मट के काव्य प्रकाश ने भी इन कवियों को अतिशय आकृष्ट किया। श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद के लिए आचार्य भानुदत्त की रसमंजरी और रस तरंगिणी, वात्स्यायन के कामसूत्र, कुक्कन के रति रहस्य, जयदेव की रति मंजरी तथा कल्याण मल्ल का अनंग रंग इनके आधार ग्रंथ रहे। छंदों के निरूपण के लिए इन कवियों ने मुख्यतः भट्ट केदार के वृत्त रत्नाकर, गंगादास की छंदोमंजरी तथा प्राकृत पैंगलम जैसे ग्रंथों का आधार ग्रहण किया। इसी प्रकार सत्संयों की रचना के लिए अमरुक कवि का अमरुक शतक, भर्तृहरि का श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक ब्रैकेट में शतक त्रयम, गोवर्धनाचार्य की आर्या सप्तशती और महाकवि हाल की गाथा सप्तशती इनके प्रमुख उपजीव्य रहे। इस प्रकार इन शास्त्रीय ग्रंथों के माध्यम से रीतियुगीन कवियों विशेषकर रीतिबद्ध कवियों ने अपनी कविता के प्रतिमान गढ़ते हुए आदर्श निर्मित किए। जहाँ तक रीतिकाल के नामकरण के औचित्य का सवाल है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले तथा रीतियुगीन साहित्य पर स्वतंत्र काम करने वाले विद्वानों ने इसे अनेक नामों से अभिहित किया है। इसी प्रकार इनकी समयावधि को लेकर भी अलग अलग मत हैं जो इस प्रकार हैं। एक, डॉक्टर अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, रीति काव्य ब्रैकेट में सन 1580 से 1692 ईस्वी। दो, मिश्रबंधु अलंकृत काल संवत 1791 से 1889। तीन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रीति काल संवत 1700 से 1900। चार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रीतिकाल संवत 1700 से 1900। पाँच, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्रृंगार काल ब्रैकेट में संवत 1600 से 1900। छः, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, अपकर्ष काल सन 1600 से 1857 ईस्वी। सात, डॉक्टर सत्यकाम वर्मा, काव्य विलास युग सन 1620 से 1803 ईस्वी। आठ, डॉक्टर नगेंद्र, रीतिकाल सन 1643 से 1843 ईस्वी। नौ, डॉक्टर राम खेलावन पांडेय, संवर्धन काल सन 1601 से 1800 ईस्वी। दस, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, रासकाल सन 1650 से 1850 ईस्वी। उपर्युक्त नामों के अतिरिक्त भी इनके कुछ अन्य नाम मिल जाते हैं, जैसे त्रिलोचन शास्त्री द्वारा दिया गया नाम छई काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल का कलाकाल, पर वास्तव में नामों की इस नवीनता के कारण रीतिकाल का नाम उलझता ही गया। रीति शब्द का जो प्रयोग वामन ने संस्कृत काव्य शास्त्र के लिए किया था, रीतिकाल के कवियों ने स्वयं ही कवि रीति, सुकवि रीति जैसे नामों का प्रयोग कर एक तरह से इस काल के नामकरण को स्वयं सुझा, पृष्ठ संख्या 162 दिया था। यही कारण है कि नामकरण और काल विभाजन का पहला प्रयास करने वाले विदेशी विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने काव्य प्रवृत्ति विशेष के आधार पर इस काल को रीति काव्य की संज्ञा से संज्ञायित किया। आगे चलकर जिसका तार्किक विवेचन आचार्य शुक्ल ने किया, मिश्र बंधुओं ब्रैकेट में गणेश विहारी, श्याम विहारी, सुखदेव विहारी मिश्र ने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में अलंकरण प्रवृत्ति की प्रधानता के कारण इसे अलंकृत काल की संज्ञा देते हुए पूर्व अलंकृत ब्रैकेट में भक्ति काल और उत्तरालंकृत ब्रैकेट में रीति काल इन दो रूपों में वर्गीकृत किया है। मिश्र बंधुओं के तर्क को कि इस युग की कविता में अलंकरण की प्रधानता है, एकदम से खारिज भी नहीं किया जा सकता, जो कि इस युग की कविता से स्वयं प्रमाणित हो जाती है। किंतु यह एकमात्र सर्वप्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। आचार्य शुक्ल ने काव्य निरूपण लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता तथा रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि काव्य के अंगों उपांगों के विवेचन की एक परंपरा सी चल जाने के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया तथा केशव से इसका प्रवर्तन न मानकर चिंतामणि त्रिपाठी से माना। इसके पीछे तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 से कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश ये तीन ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया। उनके बाद तो लक्षण ग्रंथों की भरमार सी होने लगी। कवियों ने कविता लिखने की एक प्रणाली ही बना ली। रीति काव्य के सामान्य परिचय वाले प्रकरण को समाप्त करते हुए उन्होंने रस दृष्टि से इस कालखंड पर विचार करते हुए लिखा कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की ही रही, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने शुक्ल जी के दिए हुए नाम रीतिकाल को संगत मानते हुए इसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। शुक्ल जी द्वारा दबे भाव से कहे गए श्रृंगार काल नाम को आधार बनाकर रीतिकाल के तल स्पर्शी विद्वान आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहना अधिक समीचीन समझा। इस युग के साहित्य का आलोडन विलोडन करते हुए उन्होंने अपने नामकरण के पीछे तर्क देते हुए कहा कि यदि रीतिकाल नाम की ओर देखते हैं तो उसमें रीति अर्थात रस, अलंकार, शब्द शक्ति, नायक नायिका, पिंगल आदि काव्य रीति अवश्य वर्ण्य विषय ही हैं, पर रीति शब्द बाह्य अर्थ का ही बोधक है, अभ्यंतरार्थ का नहीं। उस काल का अभ्यंतर वर्ण श्रृंगार था। रीत की सीमा में जितनी कृतियां समाविष्ट हैं वह अधिकतर श्रृंगार की ही हैं। पृष्ठ संख्या 163, थोड़ी सी वीर रस या शुद्धि भक्ति की रचनाएं ही श्रृंगार की सीमा में आबद्ध नहीं होती। रीति कविता की युगीन परिस्थितियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए आगे भी कहा कि यदि तत्कालीन परिस्थितियों पर विचार करते हैं तो भी इसका प्रतिपाद्य श्रृंगार ही ठहरता है। इस प्रकार अनेक तर्कों और प्रमाणों के द्वारा उन्होंने अलंकृति काल और रीति काल की जगह इसे श्रृंगार काल कहना ज्यादा युक्ति युक्त पूर्ण माना है। रीतिकाल के शेष नाम केवल नामों की नवीनता के लिए हैं, उनके पीछे अपने अपने तर्क हैं, पर वह सर्वमान्य नहीं है। अपकर्ष काल, काव्य विलास युग, संवर्धन काल तथा ह्रास काल थोड़े बहुत अर्थांतर के साथ रीतिकालीन कविता को पतनशील सिद्ध करते हैं। संवर्धन नाम अवश्य ही इस युग की काव्यकला को द्योतित करता है, किंतु रीतिकाल के उपर्युक्त सभी नामों में रीतिकाल ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त नाम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा रीति कविता के गंभीर अध्येता डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसका यही नाम स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा कि विषय चयन के आधार पर भी इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार का अव्याप्ति दोष न होगा, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक प्रकार की रीति ब्रैकेट में पद्धति ही है। इस प्रकार रीति के अनेकानेक नामकरणों में रीतिकाल नाम ही काव्य प्रवृत्तियों की व्याप्ति के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त और संगत लगता है। गा हिंदी में रीति परंपरा का प्रवर्तन। 15वीं से 17वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य में जहाँ भक्ति का विशाल पारावार उमड़ रहा था, उसकी जगह अचानक घोर श्रृंगारिक कविता की अनुगूंज कैसे सुनाई पड़ने लगी, यह आश्चर्य का विषय हो सकता है। पर वास्तविकता तो यह है कि भक्ति युग के उत्तरकाल में ही इसका बीज वपन होने लगा था। रीतिकाल के उदय के कारणों पर विचार करते हुए अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि भक्तिकाल के प्रथम उन्मेष के समय हिंदी में अत्यधिक शक्तिशाली और व्यापक प्रभाव उत्पन्न करने वाले कवि पैदा हुए। साहित्य जगत की पूरी शक्ति खींचकर इन महान कवियों के निकट पहुंच गई। नए आदर्श और नए जीवन दर्शन से प्रभावित हिंदी कविता तेजी से नवीन मार्ग की ओर बढ़ी। इसी में पुनः आगे उन्होंने लिखा कि 15वीं और 17वीं शती तक का साहित्य भक्ति का उमड़ता हुआ पारावार है। इस युग की प्रबलता ने सभी प्रकार की लौकिक रचनाओं को प्रभावित किया, यहाँ तक कि राज स्तुति परक और घोर श्रृंगार परक काव्यों को भी अपने रंग में रंग दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृष्ठ संख्या 164 रीतिकाल के बीज भक्तिकालीन कविता के गर्भ में ही सुप्त पड़े थे। राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बदलते ही इनका तेजी से विकास हुआ। सबसे अधिक हिंदी में श्रृंगार कविता का उपजीव्य कृष्ण काव्य रहा। जयदेव के गीत गोविंद से लेकर विद्यापति की पदावली और कीर्तिलता, सुर का सुर सागर नंददास की रसमंजरी, कृपाराम की रस तरंगिणी और हित तरंगिणी तथा रहीम कवि का बरवै नायिका भेद आदि कुछ इसी प्रकार की रचनाएं हैं जिनमें भक्ति और नायिका भेद का आलंबन श्रृंगार है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा कि एक ओर जयदेव ने संस्कृत में राधा कृष्ण के प्रेम के गीत गाए तो दूसरी ओर विद्यापति ने देवी वचन में सूरदास तथा कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में प्रेम का लौकिक आलंबन भक्ति का मधुर या अलौकिक आलंबन हो गया और प्रेम लक्षणा भक्ति का वांग्मय पूंजीभूत हुआ। यह श्रृंगार वस्तुतः मनुष्य की आदिम चाहत है, उसके सौंदर्य का मूल है। इन्हीं कृतियों के शैल्फों से आगे निकलकर रीति कविता में श्रृंगार और नायिका भेद अपने किशोर वय और चिर यौवन को प्राप्त हुआ है। रीति काल में भक्ति काल के अलौकिक आलम्बन लौकिक धरातल पर उतर आए। राधा कृष्ण अब अपनी भगवत सत्ता को छोड़कर सामान्य नायिका नायक के रूप में क्रीड़ा करने लगे। कविता के दरबारी और कवि के राजाश्रित हो जाने के कारण उसी प्रकार की श्रृंगार विलास वैभव और रति अनुरक्ति संबंधी मनोवृत्ति का परिपाक होने लगा। परिणाम स्वरूप इस युग के काव्य में नायक नायिकाओं के मन मनोवल अष्टयाम दिनचर्या श्रृंगार के संभोग और विप्रलम्ब की नाना दशाएं ऋतु वर्णन स्वकीया और परकीया के रति वर्णन कामशास्त्रीय पद्धतियों के आधार पर किया जाने लगा। नखशिख वर्णन के अंतर्गत स्त्री की देहयष्टि के नाना रूप छवियों भंगिमाओं को सौंदर्य के अनेक उपमानों नवीन अप्रस्तुत विधानों के द्वारा पूरी अलंकारिकता और कलात्मकता के साथ चित्रित किया गया। वक्ष के भूगोल से लेकर नितंबों के सुडौल तक सभी अंगों उपांगों का बड़े ही सरस और मनोयोग के साथ चित्रण इस काल के कवियों ने खुलकर किया है। परिणाम यह हुआ कि राधा कृष्ण के नाम भक्ति वास्तविक ना होकर विषय वर्णन का बहाना हो गई, जिसकी तरफ भिखारी दास ने स्पष्ट संकेत किया है। आगे के सुकवि रिंझ ही है तो कविताई नतु राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। वास्तव में भक्ति इन कवियों के वासनाजन्य आकुल मन की शरण भूमि थी। जैसा कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि जब कभी ये विलास जर्जर जीवन से उकता जाया करते थे, तब भक्ति या भीरुतावश इनका ध्यान भगवान की ओर चला जाता था। पृष्ठ संख्या 165। जीवन के घात प्रतिघातों और मानसिक द्वंद्वों के संताप को मिटाने के लिए तथा अपने धर्म भीरु मन को समझाने के लिए कभी कभार ये कविगण भक्ति की शरण में चले जाया करते थे, किंतु इनकी वृत्ति वहां बहुत देर तक नहीं टिक पाती थी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा कि भक्ति अपना प्रभाव इन कवियों पर भी डाल गई। इन्होंने नायक और नायिका के रूप में श्री कृष्ण और राधिका या गोपियों को स्वीकार किया। रचना की लोक स्वीकृति के संबंध में ये अपने मन की भक्ति की आड़ में फुसला लेते थे। कहना न होगा कि आगे चलकर इसका प्रभाव भारतेंदु युग तक छाया रहा। आचार्य शुक्ल ने केशवदास से रीतिकाल का आरंभ ना मानकर चिंतामणि त्रिपाठी से माना। इसका कारण यह था कि काव्यांग निरूपण में केशव जिन आदर्शों को लेकर चलते थे, उनके बाद करीब 50 वर्षों तक वह धारा आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने लिखा कि पर केशव के 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली, वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर रही, और अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद का अनुसरण किया। इसी से केशव के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार लक्षणों से नहीं मिलते। केशव ने अलंकारों पर कविप्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी, किंतु अब प्राप्त साक्ष्यों से शुक्ल जी की यह अवधारणा निर्मूल हो गई। केशव की कविप्रिया और रसिक प्रिया के बाद भी अनेक ग्रंथ लिखे जाते रहे। अतः सच्चे अर्थों में केशव ही रीतिकाल के प्रवर्तक ठहरते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का मंतव्य है कि कविप्रिया में अलंकार्य और अलंकार में अभेद करने वाली पूर्व ध्वनिकाल की विचारधारा की अभिव्यक्ति है, और श्रृंगार को एकमात्र रस स्वीकृत करने वाली रसिक प्रिया पर भी उत्तर ध्वनिकाल की सिद्धांत परंपरा का गहरा प्रभाव है। अतः केशवदास ही हिंदी रीति परंपरा के प्रवर्तक आचार्य कवि ठहरते हैं। यद्यपि कि कुछ लोग केशव से पहले कृपाराम की हिततरंगिणी 1541 ईस्वी को रीति परंपरा का प्रथम ग्रंथ कहते हैं, 400 छंदों वाले इस ग्रंथ में कुल 5 तरंगे हैं। इसका बड़े विषय नायक नायिका भेद है। केशवदास के अतिरिक्त जिन अन्य कवियों ने काव्यांग निरूपक लक्षण ग्रंथों को लिखकर कवि के साथ ही साथ आचार्यत्व का भी परिचय दिया तथा हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा को समृद्ध किया, उसमें चिंतामण त्रिपाठी कृत, कविकुल कल्पतरु, कुलपत मिश्र कृत रस रहस्य, देव कवि कृत भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम शब्द रसायन, सोमनाथ कृत रस पीयूष निधि, आचार्य भिखारी दास कृत काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रसलीन कृत रस प्रबोध पृष्ठ संख्या 166 और अंग दर्पण बेनी प्रवीण कृत नवरस तरंग, याकूब खां कृत रस भूषण, मतिराम कृत रसराज और ललित ललाम, जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण, कवि भूषण कृत शिवराज भूषण, सुखदेव मिश्र कृत रसारणव, रस रत्नाकर वृत्त विचार और छंदो विचार, दुलह कृत कवि कुल कंठाभरण तथा पद्माकर कृत जगत विनोद और पद्माभरण आदि अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन ग्रंथों में काव्य के सभी अंगों उपांगों तथा रसों छंदों अलंकारों ध्वनियों शब्द शक्तियों के साथ ही साथ नायक नायिका भेद अष्टयाम दिनचर्या जैसे रीतियुगीन कविता के प्रिय विषयों की सविस्तार चर्चा है। ऐसे शताधिक ग्रंथों के लेखन का काल लगभग 200 वर्षों तक अर्थात केशव से लेकर पद्माकर तक फैला हुआ है।